आगे एक और मजलूम की बात आती है जिसके लिए अल्लाह ताला खुद खड़ा हो गया, और वो है औलाद। औलाद के लिए कुरान करीम में कहीं ये नहीं फरमाया गया कि हाँ जब औलाद पैदा हो जाए तो उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको प्यार करना उसको, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि ये हर एक बंदा करेगा, उसके दिल में अल्लाह ने पैदा कर दिया। औलाद के साथ इंसान जुल्म कब करता है? जब अभी वो पेट में होती है। और वो कैसे कि इंसान उसको पेट में ही खत्म कर देता है कि दुनिया में आएगी तो फिर हमें खिलाना पड़ेगा पिलाना पड़ेगा। कैसे आजकल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इतने बच्चे कैसे अफोर्ड करेंगे? आजकल महंगाई का दौर है, ये है, कैसे इनको पढ़ाएंगे, कैसे इनको लिखाएंगे, हमारे पास तो इतना है ही नहीं। तो अल्लाह ताला उस बच्चे की जो अभी माँ के पेट में है, जो ये भी नहीं जानता उसका रब कौन है, जो ये भी नहीं जानता वो क्या हस्ती है, वो ये भी नहीं जानता उसका नफा नुकसान क्या, उसके लिए भी रब्बे करीम खड़ा हो गया, फरमाया वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम मत कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से। कत्ल की ये नहीं सिर्फ सूरत होती कि पैदा होने के बाद कत्ल किया जाए, वो भी एक कत्ल है, लेकिन एक पैदा होने से पहले भी कत्ल करना होता है। जो पेट में इंसान जब पता चले कि बच्चा है उस वक्त उसको खत्म कर दिया जाए, और किस डर से कि हम फकीर हैं, हम कैसे करेंगे, हम किस तरह इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारी तो जॉब इतनी नहीं है। अल्लाह ताला ने वालदेन को फरमाया, जैसे कुछ बच्चे होते ना, हाँ कितना वालदेन के हकूक का जिक्र है, कोई हमारे हकूक का भी जिक्र है, तो तुम्हें तो जिंदगी दिलाने वाला ही तुम्हारा रब है। जब इंसान पैदा हो जाता है ना तब तो ठीक है वालदेन करते ही है। जैसे ये किसी ने मुझे बहुत साल पहले फोन किया बड़े रोते हुए कि हाय मैं क्या करूं, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरे शोहर तो कह रहे हैं कि बस इसको खत्म करा दो। मैंने कहा ये जुल्म ना करना, तुम ऐसा करो जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए ना तो फिर मुझे दे देना। तो अब तो मेरे ख्याल बच्चा भी काफी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो बस ठीक है, उसको कुछ तसल्ली वसल्ली दे के बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो फिर मैं उसको अक्सर कहती थी कि देखो अब दोगी मुझे, वो कहती थी हाय कभी भी नहीं। मैंने कहा फिर इसी बच्चे को मारने के लिए तुम कितनी तैयार थी? तो यानी जब पेट में होता है ना उस वक्त इंसान देखो अपनी ही औलाद को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। और ये किस चीज, क्या चीज इस गुनाह पे आमादा करती है कि हम मुफलिस हैं? अल्लाह ताला ने जड़ को पकड़ा है, जो तुम्हारे दिल में बात है ना इसको पकड़ा है कि तुम्हें ये खौफ है। तो फरमाया नाहनु नरजुकुहुम वइय्याकुम, हम जो हैं हम रिस्क देते हैं तुमको भी। हाँ बल्कि पहले फरमाया हम रिस्क देते हैं उसको, हम उनको जो यानी जो बच्चा है उसका रिस्क पहले फरमाया कि तुम्हें इसके रिस्क का डर है कि ये खा लेगा तुमसे, इसको कहाँ से खिलाएंगे, इसका क्या बनेगा। हम जो है तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं, लेकिन उससे पहले फरमाया इसको रिस्क हमने, क्योंकि प्रॉब्लम ही उसका है ना तुम्हें कि ये कहां से इसको खिलाएंगे, तो हम देते हैं ना रिस्क उसको भी और तुम्हें भी। अल्लाह अकबर, जो शैतान है ना वो इस चीज को इंसान के लिए कर देता है कि वो अपनी औलाद को कत्ल करे, और अपनी ही औलाद का जो अपना हिस्सा है उसका खून कर दे। सदियों पहले तो ये होता था कि लड़कियों को जिंदा दरकोर कर दिया जाता था, आज भी ये जुर्म वैसे ही हो रहा है, आज भी हो रहा है, बाज दफा लड़कियों को और बाज दफा औलाद को। कोई भी औलाद है कहते नहीं हमें औलाद चाहिए ही नहीं, और चाहे लड़का चाहे लड़की इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, और उसको कहते हैं कि नहीं देखें। और बल्कि एक कत्ल ये भी होता है कि जो है ना इस तरह से अपने आपको परमानेंटली बांझ कर लिया जाए कि जिसके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत ही अपनी खत्म कर दी जाए। दुनिया में आजकल ये बहुत जोरों शोर से बातें होती हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग की होती हैं, उसमें क्या कहते हैं वो, उनका मसला ही है कि देखें दुनिया के वसाइल कम हो रहे हैं, दुनिया में इंसान इतने हैं, ये हैं वो हैं। ओ भाई तो पहले इंसानों को तुम खिलाते हो, ये जो जमीन से निकल रहा है वो तुम्हारे, नहीं जी हमने देख लिया कि इतने 50 सालों में इतना है जमीन के अंदर ذخیرہ، تو اتنے انسان ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ آج تک بھی وہی، صدیاں گزر گئی وہی کھلا رہا ہے اسی زمین سے، کل کو بھی اس نے ہی کھلانا. تم گارنٹیاں چاہتے ہو اگلے 50-100 سالوں کی؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ ماں باپ تک مجلسی کا ڈر رکھنے لگتے ہیں، ہائے وسائل ختم ہو جائیں گے، ہائے ایسے ہو جائے گا. شیطان یہ خیالات ڈالتا ہے، کیونکہ وسائل دینے والا اللہ ہے. آج یہ سلوگن ہے کم بچے خوشحال گھرانا، یعنی خوشحالی کا ان کو پتا ہے کہ دیکھیں نا بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا، یہ ہے وہ ہے. انسان کا نا چور اللہ نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ سوچتے ہو، وسائل کو دیکھتے ہو، وسائل کیا تم نے پیدا کیے ہیں؟ یہ جو رزق ملتا ہے یہ تمہاری اپنی کوشش سے ملتا ہے کیا؟ تم اس رب کی طرف نظر لگاؤ جو رزق دینے والا ہے. تمہارا تو یہ حال ہے، تم جتنا چاہو کوشش کر لو، کمائیوں کے لیے دھکے کھا لو، لیکن تمہیں ملے گا اتنا ہی جتنا رب چاہے گا. تو یہاں پہ اپنے عقیدے کو درست کرو، تم رازق نہیں ہو، رازق اللہ ہے. لیکن مسئلہ ہی یہاں پہ آ جاتا ہے نا، جب ہم اپنے آپ کو رازق سمجھ لیتے ہیں، ایسے ہم توحید کے بڑے قائل ہیں لیکن رازق ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی ایک اور ایڈیشن ہو جائے گا تو اس کو رزق کا میں کیسے انتظام کروں. اللہ نے عقیدہ درست کیا ہے پہلے، خود کو رازق نہ سمجھنا. اور تم اتنے ظالم ہو جاتے ہو کہ اپنے وجود کے حصے کو مار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور وہ بھی ایک ایسی جان کو جو اپنے لیے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی. یہاں جب پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے گردن دبا دیتے ہو. تو ایک خطا کار انسان کو اللہ نے یاد دلایا، یاد رکھنا رزق دینے والا میں ہوں، میں ہی ان کو رزق دیتا ہوں. کیا جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں تمہارے رب نے بھوکا رکھا تھا؟ اتنے بڑے تم کیسے ہو گئے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جب تمہیں رب دے سکتا ہے تو کیا اس کو نہیں دے سکتا؟ تمہیں آکسیجن دی، تمہیں وجود دیا، تمہیں خوراک دی، تمہیں رہنے سہنے کا، تمہیں سب چیزوں کا دیا اس نے، سب کچھ کھلایا پلایا رکھا، کیا اس کو نہیں دے گا؟ تو خود سوچو تمہیں دینے والا کون ہے؟ جو تمہیں دینے والا ہے وہی اس کو بھی دے گا. تو قاتل ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. واقعی قاتل ہوتے ہیں ماں باپ، قرآن کہہ رہا ہے نا ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو. جو قتل کرتے ہیں وہ قاتل ہی ہیں، جن کے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کا خون لگا ہوا ہے. سب سے زیادہ کیا سنگلی ہوگی، اپنے وجود کے حصے کو کاٹتے قتل کرنے، جو اپنے اندر پروان چڑھا. تو دیکھو اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا نا، جب ماں بھی اپنے بچے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتی ہے نا کہ میں اپنے ہی بچے کا خون کر دوں، تب وہ مولا کریم اتنی محبت کرنے والا وہ آڑے آ جاتا ہے، نہیں یہ نہیں کر سکتی. تو سکے والدین سے بھی زیادہ وہ محبت کرتا ہے، وہ جینے کا حق دلاتا ہے اولاد کو. زندگی سے زیادہ بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ زندگی ہوگی تو باقی سب چیزیں ہیں نا. تو جو اولادیں کہتی ہیں اللہ نے ہمارے حقوق کان دیے، تو یہ دیکھو تمہارا حقوق، تم نے تو زندہ ہی نہیں ہونا تھا اگر اللہ نہ یہ حق دلاتا. پھر بھی کوئی نادان یہ کہے اللہ نے ہم کو یہ کیوں حکم دے دیا، وہ کیوں کیا بدل دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ظلم ہوا، یہ کیوں زیادتی ہوئی، میں اس کا حکم کیسے مانوں؟ تمہارا رب تو تم سے اس وقت سے محبت کرنے والا ہے جب تم تو کوئی چیز بھی نہیں تھے، تم ایک لوتھڑے سے تھے، تمہارے ماں باپ بھی تمہاری جان کے در پہ ہوئے ہوئے تھے، اس نے تب تمہاری حفاظت کی، تب ان کو منع کر دیا نہیں خبردار یہ کام نہیں کرنا. تم تو خود اپنے حق کے لیے تب نہیں کھڑے ہو سکتے، رب تمہارے حق کے لیے تب کھڑا ہوا. اللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا ان قتلہم کانا خطئا کبیرا. دیکھو یاد رکھو یہ قتل جو ہے نا یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ چھوٹی سی بھول چوک نہیں ہے کہ آئے بھول چوک ہو گئی، نہیں ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह हो गया कत्ल करना। और एक ये भी याद रखें, एक कत्ल तो फिजिकली कत्ल करना होता है ना, एक स्पिरिचुअली कत्ल करना भी होता है। वो पता है कैसे होता है? जब माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह की पहचान नहीं कराते, जब माँ बाप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, जब उनके बच्चे गुमराह हो जाते हैं, वो भी एक कत्ल है। इसलिए कि उसमें उनकी आखरत चली गई, उनकी आखरत चली गई, वो जिंदगी से भी बदतर जिंदगी है वहां पे, अगर वो अल्लाह की पहचान नहीं रखते, औलाद अगर भटक गई तो। और ये जो फिजिकली कत्ल करना, तो ये याद रखें कि शिर्क के बाद अपनी औलाद को इस बात की वजह से कत्ल कर देना कि खाने में हमारे शरीक हो जाएंगे, ये शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। और वैसे ही ह्यूमन राइट्स के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, और बड़े बड़े मुल्क हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए और एनिमल राइट्स तक के लिए खड़े होते हैं, और वहीं पे ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां पे जाके लोग जो है ना अबॉर्ट करा देते हैं, नहीं जी आप वलादु ज़िना है क्योंकि इधर उधर अपनी इंजॉयमेंट की हुई है, तो अब ये बच्चा तो नहीं चाहिए, और उसको खत्म कर देते हैं। और औरतें अपना हक समझती हैं अबॉर्ट कराना, जी मेरा दिल चाहे तो मैं अबॉर्ट कराऊं, नहीं रब कहता नहीं, माँ तेरे से भी ज्यादा रब है इससे मोहब्बत करने वाला। तो बाद लोग कहते नहीं जी हम इसलिए कि फिर संभालना मुश्किल है, ये मुश्किल है, तरबियत करना मुश्किल है। मेरे नबी के तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे, उनकी तरबियत किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो वालिद ही मुशरिक थे, उनकी तरबियत किसने की? हम जब अपने हाथों में चीजों को समझ लेते हैं ना कि भाई मैं तरबियत करूंगी तो कुछ होगा, मैं ऐसे करूंगी तो फिर कुछ होगा, तो तब तो फिर आपने अपने आप को ही खुदा बना लिया ना। और मुझे गारंटियां कोई दे पूरे जिंदगी की के रिस्क मिलता रहेगा इसको, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं पैदा कर लूंगी। तो अगर गारंटी नहीं है तो फिर तो गारंटियां आपकी किसने दी थी जब आप पैदा हुए थे? किसी ने आपकी भी दी थी कि नहीं कि आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा? तो फिर तो हम में से किसी को भी नहीं पैदा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो खुदा बनना हम छोड़ देंगे ना, तो फिर ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि जब हम खुद खुदा बन जाते हैं, रिस्क को अपने हाथ में समझते हैं, तरबियत को अपने हाथ में समझते हैं, बच्चों के फ्यूचर को अपने हाथ में समझते हैं, हम बनाएंगे तो हम बिगाड़ेंगे, तो हमारे कम बच्चे होंगे तो फ्यूचर बेहतर हो जाएगा इनका, और अगर ज्यादा बच्चे हुए तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ये हम औरतों के लिए भी ये पर्चा बड़ा सोचने वाला है, क्योंकि ये भी चीजें लोगों के सामने आती हैं। अच्छा एक और कत्ल भी होता है, वो खशियत इमलाक पता नहीं है या नहीं, वो ये होता है कि ये शर्म के मारे कि अब इसका इस उम्र में बच्चा हो रहा है, अल्लाह ताला कोई नेमत दे रहा हो किसी उम्र में भी दे, उस नेमत को ठुकराना भी नाशुक्री है, और इसके अंदर शर्म की कौन सी ऐसी बात है? फिर हमने उन चीजों को जो काबिले शर्म है उनमें तो हमें शर्म आती ही नहीं जो आगे आ रही है, और जिन चीजों में शर्म नहीं करनी चाहिए उनके अंदर शर्म आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने 99 साल की उम्र के अंदर औलाद दे दी, तो फिर उनको भी बहुत शर्म आनी चाहिए अगर इतनी बेशर्मी की बात है ये। अंबिया की सुन्नत देखें, अंबिया का की तरफ देखें। हाँ जकरिया अलैहिस्सलाम को किस वक्त दी? वो तो कुरान में आता है मेरे बाल ऐसे सफेद हो गए, मेरी बीवी इस तरह की मांझ है, या अल्लाह इस उम्र में मेरे लिए। उन्होंने तो शर्में नहीं खाई जितनी हमें शर्में आ जाती हैं, तो अब अबॉर्ट कराने हम जा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे और हमारे बच्चे क्या कहेंगे। यानी बच्चों को यही बात नहीं पता कि उनकी कभी औलाद हो सकती है। अल्लाह माफ करे, शैतान ने भी कैसे कैसे हमें तरीके बताए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे देखें, वला तकरबुज़ ज़िना। अब आगे ना आयत नंबर ये 30 से आगे, ये 39 तक 10 आयतें हैं जिनमें बुरे बुरे कामों की आप देखेंगे कि बताई गई है, यानी कामों से برائیوں سے منع کیا گیا ہے, لا لا کے ساتھ نا نہیں کرو, یہ نہیں کرنا ہے, منع, جنہیں منع کرنے والی جو باتیں ہیں نا وہ ان کے اندر آئی ہیں, یہ نہیں, یعنی 31 سے لے کے, اور اس میں بھی ہے 29 میں بھی ہے, 29 میں بھی یہاں سے لے کے آگے تک ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی جو برائی کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پسند, ان کو اپنی زندگی سے نکالو, چاہے وہ بخل ہے, چاہے وہ قتل اولاد ہے, اور چاہے اب آگے آ رہا ہے زنا. ولا تقربوا الزنا, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, کیوں, انہ کان فاحشا, یہ ہے بے حیائی, اور کہنا کا لفظ جب آتا ہے نا تو یعنی ایک یعنی جیسے میں کہوں وہ کھاتا ہے اور کہوں وہ کھاتا ہی رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے کا مطلب کیا, آلویز, ہمیشہ ہی کھاتا ہے, اور ایک ہے وہ کھاتا ہے, پھر سوچتا ہے ایک دفعہ کھاتا ہوں, کان فاحشہ تن جب آ جاتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ ہے ہی بے حیائی, یہ ہمیشہ سے بے حیائی ہے, کوئی آج کی وہ نہیں ہے, یہ جب سے انسانیت ہے, انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ایک بے حیائی کا کام ہے. یہ نہیں یہاں پہ کہا گیا جیسے آگے کہا گیا ولا تقتلوا النفس, نفس کو قتل نہ کرو, یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب نہ جانا قتل کرنے کے, لیکن زنا کے بارے میں فرمایا قریب بھی نہ جانا زنا کے, کیا مطلب, یعنی جو راستہ زنا کی طرف لے جاتا ہو وہ راستہ بھی اختیار نہ کرنا, اس لیے کہ جو اس راستے پہ جائے گا وہ وہاں تک پہنچ ہی جائے گا, پہلے دن نہیں کوئی کہہ کے راستے پہ چلتا کہ جی ہم نے تو زنا کرنے جا رہے ہیں, نہیں, وہ شروع کہیں سے ہوتا ہے اور اینڈ اپ زنا پہ ہو جاتا ہے, شروع بڑی معصوم باتوں سے ہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا نا ولا تقربوا هذه الشجره, اس درخت کے قریب نہ جانا, کیوں یہ کہا تھا, کہ اگر تم درخت کے قریب بھی جاؤ گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے, یعنی پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, قریب جاؤ گے, یہ نہیں فرمایا قریب جاؤ گے تو تم کھاؤ گے, کھاؤ گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا وہ, نہیں, بس قریب ہی نہیں جانا, تم قریب جانا بھی ڈینجرس ہے, اسی طرح یہ بتایا گیا قریب بھی نہیں جانا, اور اس چیز کے لیے اللہ تعالی نے پھر ایسے احکامات دیے, یہ جو ہمیں سمجھ نہیں نا آتے کہ ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس طرح کے حکم کیوں دیے, اس طرح کے حکم کیوں دیے, اگر آپ ان کی ڈیٹیل کے اندر جائیں تو وہ سارے اس لیے ہیں, وہ احکامات جن کی میں ابھی آپ کو لسٹ بتاتی ہوں, کہ جو سدے ذرائع ہیں, سدے ذرائع کا مطلب, سد کا مطلب کیا, بند کر دینا, ذرائع کا مطلب کیا, جو بھی راستہ اس طرف جا رہا ہے, جو بھی ذریعہ ہے, ذریعہ ہی ختم کر دینا, یعنی وہ سیڑھی ختم کر دینا جس پہ چڑھ کے وہاں تک پہنچ سکتے, وہ سیڑھی نکال دی, یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے نا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, مگر وہ قوانین اس لیے ہیں تاکہ کہیں زنا تک کوئی پہنچ نہ جائے, جیسے شرک کے لیے سدے ذرائع ہیں, آپ تصویریں نہ لگائیں گھر کے اندر, آپ ایسے نہ کریں, آپ قبروں پہ نہ جائیں, آپ فلانی جگہ پہ ان سے نہ مانگیں, یہ ساری شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں, آپ گھروں میں بت نہ رکھیں, آپ کہتے ہیں ہم کون سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں, نہیں کرتے, لیکن یہ سدے ذرائع ہیں, ان کے ذریعے ہو سکتا ہے آگے شرک نہ آ جائے, بہت سی چیزیں, تصویریں بناؤ نہیں جانداروں کی, تو یہ سدے ذرائع ہیں, اسی طرح زنا کے لیے بھی سدے ذرائع ہیں, اور وہ کیا ہیں سدے ذرائع, مثلا جن کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نا جڑ سے ہی اس چیز کو اکھاڑنے کے لیے, کہ یہ کوئی طریقہ ایسا نہ ہو, کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہاں تک کوئی پہنچ جائے, اور اس کے اندر کیا ہے, مثلا مکسڈ گیدرنگ, مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ پہ یعنی پارٹی ہے یا ایک جگہ پہ, اس کے اوپر پابندی ہے, کیونکہ وہیں سے کیا ہوگا, آپس میں اٹریکشن ہوگی, یہیں سے تعلقات بنتے ہیں, یہیں سے غیر محرموں کی پر نظر اٹھتی ہے, یہیں سے ان سے پھر بات چیت ہوتی ہے, یہیں سے ان کے ساتھ پھر انسان جس کو کہیں گے وہ ہونے لگتا ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, فرینک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, تو غیر محرموں سے ملنا اور خاص طور پہ تنہائی میں ملنے پہ تو بالکل ہی پابندی, تنہائی میں نہیں ملنا, اور اسی طرح مردوں عورتوں کا زیادہ نہ میل جول, اس کے اوپر اسلام پابندی لگاتا ہے, گھروں سے عورتوں کا بند سمر کے جو نکلنا, یہ جس اس سے آپ کو جو منع کیا جاتا ہے نا کہ اپنے زینت کی اظہار نہ کرو, یہ بھی ریزن کیا ہے, یہی ریزن, جب بند سمر کے نکلیں گے, جب یہ ہوگا ان کے جذبات بھڑکیں گے اور پھر وہ زنا تک لے جائیں گے, घर के दायरे में रहो, जितना घर में रहोगे उतना ही अच्छा है। फिर निकाह को आसान करने का, अगर निकाह आसान होगा तो जिना का रास्ता खुद बहुत बंद हो जाएगा। इसी तरह औरतों को जो हिजाब का हुक्म दिया गया वो भी इसीलिए, जरिया खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो भी मर्दों के अंदर फिर शहवत की आग भड़कती है। जब ऐसी औरतों को देखा जाता है कि जो, जैसे हम गैर मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, तो वहां पे ऐसी औरतें जो हिजाब तो क्या सतर के भी नहीं हदूद का कोई ख्याल रखती, और सतर भी उनके नंगे होते हैं, तो उसके अंदर फिर जाहिर है एक इंसान के अंदर, जवान आदमी के अंदर एक हिजान पैदा होता है। इसीलिए फिर नजरों को झुकाने का मर्दों को पहले हुक्म दिया गया, औरतों को भी हुक्म दिया गया। ये नहीं है कि औरतें अब नजरों को झुकाने की उनको जरूरत नहीं, कुरान में मर्दों को भी हुक्म दिया गया, औरतों को भी नजर झुकाने का हुक्म दिया। अब चाहे हम कहेंगे नहीं ये तो कोई स्कॉलर है, ये तो फलां है, ये तो नुमान अली खान है, इसको तो देख सकती हूं मैं क्योंकि ये तो एक वो है, तो अब उनको वॉर वॉर से देख रहे हैं, नहीं, सबके लिए, चाहे वो कोई स्कॉलर है चाहे वो कोई है, आपकी नजरें उठ के उसको नहीं इस तरह से देखें कि हम कहते हैं हम कौन से शहवत से देख रहे हैं, नहीं, गौर से देखना किसी को गैर महरम को इसकी इजाजत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करना इसकी इजाजत नहीं है। इसी वजह से इस्लाम जवानों को निकाह की भी तलकीन करता है, यहाँ के निकाह होगा तो फिर खुद ब खुद इंसान की जो एक जिनसी जरूरत है वो पूरी होगी और जिना का रास्ता बंद होगा। इसी तरह हम दूसरी चीजों को देखते हैं जहां पे ये कहा गया कि अच्छा नजरें झुकाने के अंदर सिर्फ लाइव औरत को देख के नजरें झुकाना या लाइव मर्द को नहीं, बल्कि स्क्रीन्स के ऊपर है, इसके ऊपर तस्वीरें हैं, यानी कहीं पे भी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, कोई फिल्म है, कोई ड्रामे हैं, कोई ऐसी चीजें हैं, मॉडलिंग हो रही है, मतलब इतनी यानी दुख इस कदर होता है कि देखो मॉडलिंग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उनको मर्द गौर से देख रहे हैं, वो क्या मॉडलिंग कर रही है, वो अपने आप की मॉडलिंग कर रही है कि ये हम है। उनके कपड़ों को तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कभी खरीदता होगा या करता होगा, क्या किस किस्म की चीजें हैं जो कि मॉडलिंग की जा रही है, जिनके लिए आदमी हवस की नजरों से जिनको देख रहे हैं। आज देखिए निकाह करना कितना मुश्किल कर दिया गया, हाँ, लेकिन फ्रेंडशिप्स करना कितना आसान हो गया। निकाह के ऊपर इतने लतीफे और बीवियों के ऊपर इतनी बुरी बुरी बातें और फन, और उनका ये उड़ाया जाता है गर्लफ्रेंड और महबूबा के लिए तो कोई नहीं है, महबूबा के लिए तो बड़ी शायरी भी है बड़ी इस तरह, और जहां पे हम वो देखते हैं कोई कार्टून देखते हैं हाथ में बेलन उठाया हुआ है और बच्चों की फौज है और वो पागल हो रही है एक औरत गुस्से के अंदर, ये बीवी है और ये कोई डायन है और ये फलां है, वो दिखाया जाता है। क्या पोर्ट्रे करते हैं हमारा मीडिया, क्या पोर्ट्रे करता है कि शादी जो है एक मुसीबत है, एक गलती कर बैठना, इसका नतीजा ये है जो तुम भुगतोगे। इसीलिए लोग आजकल शादियों से घबराते हैं, चाहे लड़कियों चाहे लड़कियों, कहते हैं शादी का दफा करो, इसको तो हम मुसीबत में क्यों पड़े, शादी एक मुसीबत है, वो कहते हैं जो खाएगा ये लड्डू वो भी पछताएगा। तो ये हमें प्रोमोट किसको करना चाहिए, निकाह को, और हमारे यहाँ प्रोमोट किसको किया जाता है कि वैलेंटाइन डे को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, सारा फन ही उसके अंदर है, ग्लैमर ही उसके अंदर दिखाया जाता है, हर आपकी फिल्म हर आपकी ड्रामे और उसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि माँ बाप गलती के ऊपर है, ये देखो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो जो ऐसे कर रहे हैं। इसी तरह सतर की हदूद बताई गई हमें कि जो है ना ये सतर की हदूद है, इस सतर को कवर करो, इस सतर को किसी के सामने नहीं है, मर्द मर्द कभी ना सतर देखे, औरत कभी ना देखे, एक कपड़े के अंदर औरत औरत के साथ भी ना सोए, इतनी हद तक की गई कि जिना का सद्दे जराए ऐसे किए गए। फिर जब आप कहते हैं ना हमें समझ नहीं आती क्यों ऐसे किए गए, हमारी तो नीयतें ऐसी नहीं है, नीयतों की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने वो रास्ता बंद करना है जो यहां तक लेके जा सकता है। ये सारे काम निकास यानी जिना से पहले ये सारे काम बिल्कुल बेजरर से नजर आते हैं, क्या हो गया अगर उनसे बात कर ली मैंने, क्या हो गया अगर थोड़ी देर डेट पे चले गए, क्या हो गया अगर फ्रेंडशिप हो गई, क्या हो गया अगर तन्हाई में किसी, तो बिल्कुल दकियानूसी बातें। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द किसी औरत के साथ हर जिस तन्हाई में ना मिले, इल्ला ये कि उसका महरम साथ हो। अब अपने शौहर को साथ लेके जाए तो उसके पास चाहे डॉक्टर के बैठे हैं, चाहे किसी स्कॉलर के पास बैठे हैं, चाहे कहीं पे बैठे, लेकिन महरम साथ हो। हदीस में दूसरी में आता है कि शौहर की गैर मौजूदगी में औरतों के पास मत जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हें से हर एक के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। मैंने मर्दों को भी क्या दिया गया, नहीं तुमने जाना, गैर महरम को टच करने की ममानियत है, टच भी नहीं कर सकते। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गैर महरम औरत को छूने से बेहतर है कि वो मर्द अपने सर में लोहे की सीख चबो ले, यानी जैसे सीख घुसा देते हैं वो बेहतर है बजाय कोई मर्द किसी औरत को टच करे और हम शेक हैंड करते रहते हैं। नहीं करने, इसकी इजाजत नहीं है। तो ये सारे जरिए रास्ते हैं, रास्ते। अब इन रास्तों को अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। फिर ऐसी म्यूजिक, ऐसी शायरी, आप कहते इसके अंदर क्या बात है, ये कौन सी राम भाई, वो जो आपके जज्बात को अराउज करते हैं। उसके बाद इंसान फिर ऐसे कॉन्सर्ट्स में बैठा है, ऐसी जगहों पर बैठा है या ऐसा म्यूजिक सुनता है, उसके बाद उसका भी दिल चाहता है कोई हो इश्क मुआशका, कोई हो ऐसी चीज। अभी मुझे किसी ने बताया कि आजकल के ड्रामों की तो नहीं देखती, लेकिन ड्रामों की कहती उन्होंने टॉपिक ही ये आजकल चल गया है कि जो है ना, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई कोई किसी का कहीं चक्कर है किसी का कहीं। तो इस्लाम ने तो इन चीजों को मना किया। वो स्टार्ट कैसे होते हैं, बस ये बात ही करनी है, वो फोन किया बीवी ने उसकी उठा लिया और उसका हस्बैंड घर पे नहीं था, बातचीत शुरू हुई, थोड़ी बातचीत हुई फिर और हुई, फिर अगले दिन फिर उसी टाइम पे फोन कर लिया, फिर अगले दिन फिर दिल चाहना शुरू हो गया बात करने का, वो आगे से आगे बात बढ़ती गई और वो एंड अप किस पे होगी, किसी खैर पे तो नहीं होनी। ये तो शर ही है, शर का दरवाजा खोल दिया। इस्लाम ने इसलिए इन चीजों को मना किया। ऐसी जो तस्वीरें चाहे रिसालों में छपती हैं, चाहे वो इंटरनेट पे होती हैं, चाहे वो फिल्मों में है, चाहे इन बेहया, इनको कहा ये फहाशी है, बेहयाई। याद रखें, जिना सिर्फ शर्मगाह से नहीं होता, जिना आंख का भी जिना, कान का भी जिना। शर्मगाह तो उसकी तस्दीक करती है या तकजीब करती है, जुबान का भी जिना। आजकल जुबान के जरिए भी जो जिना हो रहे हैं आप सबको पता ही होगा चीजों का कि क्या हो, किस तरह से जुबान के जरिए इस तरह की बातें और ऐसी टॉक की जाती है जो दूसरे को करे। तो ये यानी ये सब जिना है। और जानी जब जिना करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी ईमान उसमें से निकल जाता है, उसके अंदर ईमान नहीं होता उस वक्त। तो इस ऐसी हालत में इंसान मर जाए तो क्या हो, ईमान के बगैर होगा, वैसे अपने आप को मुसलमान कहते थे। तो ये चीजें आज इतनी कॉमन हो गई हैं, पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें ना वो लग रही होंगी कि कभी अजीब ही बातें कर रहे हैं, लेकिन दीज आर फैक्ट्स। इस्लाम नहीं चाहता कि कोई एंड अप हो यहां तक, जो कि इतना बड़ा गुना है, कबीरा गुना है। अब उसके अंदर एंड अप होने से पहले वो कहता है कि तुम इसके करीब ना जाओ, क्योंकि जो इन रास्तों पे चल पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके कुछ मसले हो जाएंगे। सबके साथ नहीं भी हो, लेकिन जिनके साथ भी होंगे सबको मना कर दिया गया। ये ले जा सकती है करीब, ये तुम्हारे अंदर उकसाहटे पैदा कर सकती है, क्योंकि तुम देखो आप नहीं बुरे लेकिन शैतान तो बुरा है ना, वो तो साथ है ना। आज इसको कहते हैं भाई हम क्या करें, वो तो फिर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, अगर हम एक दूसरे साथ बातें नहीं करेंगे तो हम कैसे एक दूसरे को जानेंगे। तो बातें करने से थोड़ी आप किसी को जानते हैं, बातें 100 साल भी करते रहे जब उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं तो असलियत उसकी तब पता चलती है कि बंदा है क्या। तो ये चीजें भी हमने एक्सक्यूज बना ली हैं आजकल। टेक्स्टिंग होती है, टेक्स्टिंग के अंदर क्या है, जब टेक्स्टिंग करोगे चलो फोन पे नहीं बात कर रहे, टेक्स्टिंग टेक्स्टिंग भी तो एक गुफ्तगू है, उससे भी तो आगे बढ़ते ही जाते हैं। आप टेक्स्टिंग कर रहे हैं तो अब दिल चाह रहा है मिलने का भी, अब मिल रहे हैं तो और दिल चाह रहा है इससे भी आगे कुछ और करने का। ये फाहिशा है, फोहश काम है, बेहयाई है। और बेहयाई अल्लाह ताला को नापसंद है, ये बुरा रास्ता है। इसी वजह से देखें इतनी तक ममानियत है कि औरत किसी दूसरी औरत का हाल गैर महरम के सामने बयान ना करे। कोई औरत अपने घर जाके ना अपने हस्बैंड के सामने कहे कि जो है ना फना इतनी खूबसूरत है, उसकी बीवी ऐसी और उसकी बेटी ऐसी, और नहीं कभी ना करेंगे बात। और औरतों जो माएं हैं मत अपने बेटों के सामने ऐसी बातें करें कि फलानी लड़की बड़ी हसीन और फलानी बड़ी ऐसी। वो बेचारी पर्दे के अंदर रहती होगी, आप जाके उसका सारा पर्दा ऐसे बयान कर देंगे उसको, वो अपने ख्यालों के अंदर ही उसकी तस्वीर बना ले। तो जो भी उकसाने वाली बातें हैं, जो भी इश्तियाल दिलाए इंसान के जज्बात में, वो सब मना है, वो सब रोक दी गई, ये खराबी तक ले जाएंगी। आप देखें इंडिया में इतना रेप हो रहा है, क्यों होता है इतना ज्यादा, वहां पे जो बेहयाई की फिल्में और वो बनती हैं इतनी ज्यादा है, वो खुद परेशान हो गए कि क्यों इतनी ये इस तरह की चीज होती है। इसी तरह हमारे मुल्कों में जब उनको जायज तरीके तो है नहीं अपना आप अपने जज्बात को पूरा करने के, अपनी तस्कीन करने के, तो फिर वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि अस्तग़फिरुल्लाह कहाँ तक पहुंचा देते हैं। वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हरम अल्लाह इल्ला बिल हक, और ना तुम कत्ल करो किसी नफ्स को जिसको अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ। हक क्या होता है? हक के साथ कत्ल करना क्या जायज है? हाँ, जबकि इंसान किसी को किसास के तौर पे कत्ल करता है या इंसान किसी शादीशुदा को रजम करता है तो वो है कि हाँ इसमें ये हक है, मगर इसके अलावा किसी और को जायज नहीं है कि वो किसी को कत्ल करे, किसी नफ्स को भी कत्ल करना। और इसके अंदर आप ये देख लें कि जो अबॉर्शन कराना है वो भी अब जिना के बाद फौरन कत्ल की बात आती है, पहले भी कत्ल की बात आई फिर अब फिर से कत्ल की बात आ गई। जिना के बाद भी जो बच्चा होता है उसको अबॉर्ट करना ये कत्ल हो गया। फरमाया कत्ल नहीं कर सकते, कत्ल जायज नहीं है, किसी सूरत जायज नहीं। और सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा उसकी सजा जहन्नम होगी, उसमें हमेशा रहने वाला होगा, उस पे अल्लाह का गजब होगा, अल्लाह की लानत होगी और उसके लिए बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। इतनी सारी सजाएं उसके लिए बताई गई सूरह मायदा में, अल्लाह ताला ने कत्ल की कराहत के लिए बताया कि बनी इसराइल पे भी अल्लाह ने लिख दिया एक शख्स को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद एक दूसरे को कत्ल करके काफिर ना बन जाना, ये बुखारी की रिवायत है। क्या मतलब? इसका मतलब एक दूसरे को कत्ल करना कुफर है। ये तो हजतुल विदा में क्या फरमाया था कि तुम्हारा माल जान आबरू अल्लाह ने हराम कर दिए हैं, और मुसलमान का खून तो काबे से भी ज्यादा हुरमत वाला है, इतनी उसकी इज्जत है। और देखो आज खून कैसे बहाया जा रहा है, कोई यानी ये तो कोई मसला ही नहीं है किसी का खून करना। कयामत की निशानियों में से है कि ना मरने वाले को पता होगा उसने क्यों मारा, ना मारने वाले को पता होना उसने क्यों मारा। क्योंकि कुरान तुम्हारा तो साफ तौर पे ये कहता है कि कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे खून खराबा कर रहे हैं, जबकि तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा तो कुरान कहता है कि मत कत्ल करो सिवाय हक के। हक फिर जानो कि क्या है? क्या ये हक है कि एक एक बम उड़ा के और सारी दुनिया को उसमें खत्म कर दिया जाए? क्या ये हक है? और ये देखें कि एक रिवायत में यहां तक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कि जिम्मी को कत्ल करने के बारे में, कि जिम्मी को भी जिसने कत्ल किया, जिम्मी कौन होता है कि जो यानी मुसलमान रियासत में इस्लामी रियासत के अंदर कोई गैर मुस्लिम मसलन रहता है, हमारे मुल्क के अंदर कोई गैर मुस्लिम रहते हैं या बांग्लादेश में है कोई गैर मुस्लिम लोग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू इतने बरस 40 बरस की मुसाफत से आती है, जो 40 बरस है जो 500 बरस है। ये एक जिम्मी को कत्ल करने का, और सोचे दूसरों को कत्ल करने का क्या होगा जो मुसलमान, तो जिम्मी को भी नहीं कत्ल। ये नहीं होता कि फ्री फॉर ऑल है, चलो जी ये तो गैर मुस्लिम है इसको तो जितना भी कत्ल करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं है। हमने क्या अपने दीन को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं आज, क्या लोग कत्ल करके समझ रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं? हर जान काबिले एहतराम है, अल्लाह ने बनी आदम को तकरीम दी है, बनी आदम को कुरान कहता है, ये सिर्फ मुसलमान को नहीं बनी आदम को तकरीम दी है, अल्लाह ने इज्जत दी है, हर जान काबिले एहतराम है। अब दुनिया में ही फैसले करने बैठ गए कि ये काफिर है तो हम इसको मार देंगे और ये मुसलमान है तो हम, और मुसलमान भी जो अच्छा है तो फिर हम उसको रहने देंगे और बाकियों को भी हम मार देंगे, ये इस्लाम नहीं है कम अज कम, कुछ और उसको कह सकते हैं मगर इस्लाम नहीं है। मन कुतिला मजलूम, और जो कत्ल किया गया जुल्म के साथ, अल्लाह हू अकबर। جو مظلوم قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولی سلطانا، ہم نے اس کے ولی کو سلطان دے دیا، قوت دے دی، حق دے دیا. ہاں اس کے ہاتھ میں کیا حق ہے کہ اب چاہے تو وہ قصاص لے لے، چاہے تو وہ دیت لے لے، اور چاہے تو وہ معاف کر دے. تینوں چوائسز اس کے پاس ہیں جو ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، یا پھر دیت، یا پھر معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو تینوں اختیار مقتول کے وارثوں کو دے دیے. اور دیت میں کیا، 100 اونٹ ہوتی ہے قتل کی دیت. اور یہ بھی اگر وہ مانے گا کہ مجھے دیت دے دو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی کورٹ ہی نہیں یہ کہہ سکتی کہ نہیں جی دیت اس کو ادا کر دی ہے ولی کو اور بس ٹھیک ہے اس کا معاملہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا. اور یہ بھی ہمارے ہاں چونکہ یہ تو قوانین ہے نہیں نا شریعت کے، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹیں ہی فیصلہ کرتی ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کورٹ کو کہا کہ تم ولی کو بلاؤ، وہ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور یہ قیامت کے دن نا سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا، خون کا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں ساری دنیا کا فنا ہو جانا حقیر ہے. یعنی کسی مومن کو اگر کسی نے بلا وجہ قتل کر دیا تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، پوری دنیا بھی فنا ہو جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں اس کے لیے جتنی یہ نقصان اس کے لیے اس کو برا لگتا ہے. کیونکہ جان کا کوئی نیم البدل نہیں. دیکھیں ایک جان کو آپ نے رانگ فلی قتل کر دی تو اس کا آپ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں لا سکتے، اس کو کبھی نہیں واپس لا سکتے. آپ نے اس کو زندگی سے محروم کر دیا. اور کتنا بھی کوئی گناہگار ہو، کتنا بھی کوئی وہ ہو، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اس کو قتل کرنا کسی صورت بھی نہیں جائز، انلیس کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کے قانون کے مطابق رجم کرنا ہو. رجم کرنے کے لیے ہاں وہ ایک سزا ہے. اب قتل کا بدلہ ضرور قتل ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کو اس کے ساتھ دیکھ لیا، غیرت کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، اس کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، کوئی رائٹ نہیں، کوئی رائٹ نہیں. یا کوئی برائی اور کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ بھی کسی انسانوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا. یہ بھی جو قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ بھی قانون اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. شادی شدہ زانی ہے تو اس کو بھی رجم کرنا ہے تو تب بھی جو قانون حکومت ہوگی وہ کرے گا. لوگ نہیں اٹھ اٹھ کے تو چل پڑیں گے، کسی کو بم سے اڑا دیں، کسی کو گولیوں سے اڑا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے جو کہ لوگ پڑھتے ہیں، جو یہ تو قرآن کی سمپل سمپل سیدھی آیتیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے کبھی قرآن پڑھا اور اس کو یہ نہ بات سمجھ آئے کہ انوسینٹ کو قتل کرنا کیا ہوتا ہے. انوسینٹ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو نہیں قتل کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی کافر ہوتے تھے یا نہیں؟ ساروں کو قتل کر دیتے، پھر اچھا بھلا اسلام پھیل جاتا، خود بے خود سارے مسلمان ہی ہوتے. ایون سورہ توبہ میں آپ یہ سوچیں کہ لاسٹ اینڈ کی بات جب آتی ہے، مکہ فتح ہو گیا، تب بھی کہا کافروں کو کہ یہ تمہارے پاس ٹائم ہے، تم یہ چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ نہیں کہ آپ ان کو ساروں کو ختم کر دو، چلو ختم ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. فاتح تو تھے، سب کو ختم کر دیتے. سیرت کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور آج اس دین کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، وہ بھی کون سا قرآن لے کر آتے ہیں. ایون دیکھیں ولی کو کہہ دیا گیا فلا یسرف فی القتل، تمہیں بھی یہ، تمہیں اللہ نے حق دیا کہ 3 چوائسز میں سے کوئی چوز کر لو، لیکن تم حد سے نہیں بڑھ سکتے قتل کرنے میں. حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ جی جی تم نے ہمارا 1 قتل کیا، ہم تمہارے 4 کریں گے. اور یہ ہمارے ملک میں تو اتنا کامن ہے، آپ خبروں میں آئے دن دیکھتے ہوں گے انہوں نے اس خاندان کے 10 افراد اڑا دیے کیونکہ انہوں نے اپنا بدلہ لیا. اس نے جی کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آئے دن ان کے پاس ریموٹ ایریا میں اس کی جاب تھی، تو اس نے بتایا کہ آئے دن لوگ آتے ہیں کہ ہم کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کو کچھ ہے، کوئی اتنی باڈیز آ جاتی ہیں کہ جی ان دونوں خاندانوں کی دشمنی تھی، انہوں نے ان کے اتنے بندے اڑا دیے، اتنے بندوں کو قتل کر دیا، ختم بات. اسراف کہیں پہ بھی نہیں کہ اگر کسی کا 1 قتل ہوا تو جس نے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لینا ہوگا، और ये भी नहीं होगा कि कातिल को भी कत्ल करेंगे, इसके बाप को भी मारेंगे, इसके बेटे को भी मारेंगे, इसकी नस्ल को खत्म कर देंगे, इसके खानदान में कोई मर्द रहे ही नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं जायज। और ये भी नहीं जायज कि उसने तो गोली से मारा और अब इसको मारा जाए तो मुसला किया जाए या किसी तरह टॉर्चर कर करके ऐसी इबरतनाक मिसाल बना दी जाए कि कोई चौक के अंदर उसको लटका के और उसको खाल उतारी जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो ज्यादती नहीं करनी, अगर कत्ल का भी बदला लेना है तो तुम्हें भी ये जायज नहीं है कि तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दे दिया कि जो है ना जब जो मर्जी करो। तो देखो हर एक को अल्लाह ताला ने कैसे लिमिट्स के अंदर रखा है, नहीं ये तुम्हारी बाउंड्री है, तुम्हारे साथ ठीक है जुल्म हुआ है, उसकी जान जाएगी, अगर तुम किसास लेना चाहते तुम्हारा राइट है, लेकिन तुम भी हद से बढ़ नहीं सकते। इन्नहु काना मंसूरा, बेशक वो है मदद किया हुआ, यानी जिसकी मदद की गई हो। हमारे मकतूल के वारिस जो हैं उनके हाथ में होता है ना कि वो क्या फैसला करें, तो अल्लाह ने उनकी मदद की है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम खुद ही जालिम बन जाओ। फिर वला तकरबू माल यतीम, और ना तुम यतीम के माल के पास जाना, यतीम का माल जिसने खाया तो वो ऐसे ही है जैसे अपने पेट में अंगारे भर रहा, और आज नहीं अंगारे नजर आएंगे वो कल को नजर आएंगे कयामत के दिन। तो यतीम के माल के पास भी ना जाना, यानी यतीम का माल अगर तुम्हारे पास है तो ऐसा ना हो कि उसमें से बेजा खर्च करना शुरू कर दो या उड़ाना शुरू कर दो कि बड़ा होगा तो हमसे ले लेगा, इसे पहले पहले खर्च कर लो, इसे पहले पहले खा लो इसका माल, उसमें मत इसराफ करना, उसको मत इधर बेदरे इधर उधर खर्च करना। अपने माल को संभाल संभाल के रखते हो, वैसे ही उसके माल को भी संभाल के रखो। जो मालदार हो और उसकी किफालत में कोई यतीम हो तो उसको तो उसके माल से बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। हाँ जो मुफलिस है, इल्ला बिल्लती हिया आसन, मगर वो आसन तरीके से ले सकता है, यानी वो क्या कर सकता है कि जो एक मारूफ तरीका है उसमें से जाहिर है वो खुद गरीब इतना है, मसलन कोई किसी यतीम है, उसका चचा ने उसकी किफालत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब वो चचा बेचारा खुद इतना गरीब है, वो अपने घर का खर्चा चलाए कि इसको देखे, अब क्या है वो उसमें से ले सकता है मगर आसन। या इसके दूसरे भी मतलब इल्ला बिल्लती या आसन, यानी जब खर्च भी करना है तो अपना समझ के करो, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मत करो जहां पे कोई नुकसान की उसको हो या नुकसान की नीयत हो। और जो मुफलिस है वो भी दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से ले, अपना खर्चा उसमें से ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन लोगों के साथ यतीम खाने पे बैठ जाए शैतान उस खाने के नजदीक नहीं आता, यानी अल्लाह ताला बरकत डाल देता उस खाने में, और वो घर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें यतीम बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा। इब्रानी की हदीस है, यतीम अगर हमें मौका अल्लाह ताला दे और हम थोड़ी सी हिम्मत करें, ऐसे बच्चों को जो यतीम हो उनकी किफालत की जिम्मेदारी लें, उनकी किफालत करें, और यानी सोचें कि वो घर जिसके अंदर यतीम की परवरिश हो रही है अल्लाह को बड़ा पसंद है, तो इस तरफ भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। इसी तरह वो बच्चे भी जो फॉस्टर होम्स में आज के वक्त में ये यहाँ पे बताते हैं कि फॉस्टर पेरेंट्स जो मुस्लिम है वो फॉस्टर पेरेंट्स नहीं मिलते उनको। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का कोई मसला ऐसा हो गया है तो अब उनको क्रिश्चियन पेरेंट्स को देना पड़ता है, वो फिर फॉस्टर पेरेंट बनते हैं और वो उनके घरों में परवरिश पाते हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप या तो जेलों में चले गए या कुछ भी हो गया, अब उनका कोई नहीं है, तो अब मुसलमान फैमिलीज कहाँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तो यतीम बच्चे थे जो इनकी वो किफालत करती थी, बहुत सारे यतीम बच्चों की उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम बच्चों के साथ क्या रवैया था, वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। तो ये भी एक यतीमी हो गई जिसका ऊपर कोई भी नहीं है, फॉस्टर होम्स के अंदर वो पल रहे हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज के पास वो पल रहे हैं वो, और हमारे लोग आगे नहीं आना चाहते कि हम क्यों जिम्मेदारी है, हमसे तो तरबियत होगी नहीं, हमसे तो वही बात है ना कि हम खुद रब बन गए, हम खुद कहते हैं कि पहले हमारी गारंटियां हों तो फिर हम उसके बाद करेंगे। अगर इस इंसेंटिव को लेकर इन चीजों को सामने रख के हदीस को जो लोग कर सकते हैं, जो खास तौर पे मैं उनको कहूंगी जिनके पास औलाद नहीं है, वो आगे बढ़ के इस चीज के लिए वो करें कि अपने घर को फॉस्टर होम बनाएं, उनके पास अप्लाई करें और बच्चों को लें जो उनके घर में तरबियत पाएं और उनकी एक इस्लामी तरबियत करें, अपने तरीके बताएं, बल्कि वो बच्चे देखेंगे कभी वो बड़े हो के अगर मुसलमान नहीं भी हुए तो उनको ये पता होगा मुसलमान कौन होता है, वो इससे कम अज कम मैसेज उनको मिल जाएगा इस्लाम क्या है, और मैं एक मुसलमान के घर में परवरिश पाया था, और मुसलमान कैसे होते हैं, कितने शफीक और मेहरबान होते हैं। इस तरह हमारा ज्यादातर ध्यान नहीं, और जो औलाद नहीं रखते वो कहते हैं हम क्यों लें किसी का बच्चा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी औलाद नहीं थी, उन्होंने तो लिए थे दूसरे बच्चे, उन्होंने तो इस चीज को नहीं सोचा था। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा मेरा दिल सख्त हो गया। आपने फरमाया क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए? तो उसने कहा कि हाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे यतीम पे शफकत करो, उसके हाथ सर पे हाथ रखो और अपने खाने में से उनको खिलाओ, तुम्हारा दिल नरम हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, कसम खा के, कसम है उस जात की जिसने मुझे हक दे के भेजा है, जिस शख्स ने यतीम पे शफकत की, उससे नरम बात की और उसकी यतीमी और कमजोरी पे तरस खाया, और दूसरे उसका बताया कि अपने हमसाये के सामने कसरत और दौलत की बिना पे फख्र का इजहार नहीं किया, इन दो का बताया कि अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन अजाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अजाब नहीं देगा उसको जो ऐसा होता है। ये सारी चीजें तो खैर अब हमारे लिए आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, अब हम क्यों यतीमों का करें, हमें अपने घर के जान झंझट इतने हमें क्या जरूरत है ना। हम सारे सेल्फिश हो चुके हैं ना, इतने सेल्फिश हैं कि अपने आप, अपनी जात, अपने बच्चे, मेरा घर, मेरी, मैं क्यों करूं किसी का। यतीम खाने में पैसे दे देती हूँ, हाँ यतीम खाने में पैसे दे दोगे, मगर उन यतीमों के सर पे शफकत का हाथ कौन रखेगा। यतीम खाने में उनको एक इमारत तो मिल जाएगी, छत तो मिल जाएगी जिसके नीचे वो रहते हैं, मगर एक प्यार करने वाली कोई हस्ती नहीं मिलेगी। उन बच्चों को प्यार और तवज्जो चाहिए होती है, उन बच्चों को सिर्फ छत नहीं चाहिए, दो वक्त की रोटी नहीं चाहिए। और इंसान अगर अपने बच्चों को इस जगह पर रखकर देखे तो फिर समझ आती है कि क्या चाहिए होगा उनको। उनकी आंखों में जो हसरतें और जो दुख होता है उनकी आंखों में, उसका अंदाजा नहीं कोई लगा सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, तो आपको बहुत यतीमों के ऊपर बहुत उनका ख्याल होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आपने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को करीब करके दिखाया। तो चाहे वो फॉस्टर पेरेंट आप बने, चाहे आप वैसे यतीम को स्पॉन्सर करके लेकर आए और उसको अपने घर में उसकी किफालत करें, मगर जो लोग कर सकते हैं वो इस उसमें भी आ गए हैं। ये एक ऐसा पर्चा है जो आपको आखरत के अजाब से भी बचा सकता है, और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कुर्ब भी दे सकता है, इतने करीब हो जन्नत में। अच्छा, तो कब तक उसके माल की हिफाजत करनी है, कब तक उसके माल को संभाल के रखना है? हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब तक वो अपनी जवानी को पहुंच जाए, जवान हो जाए तो फिर उसका माल उसके हवाले कर दो। ये ना उसे पहले ही खा पी के खत्म कर दो कि ना रहेगा माल, तो जब बड़ा हो जाएगा तो हमसे ले लेगा, तो इसलिए पहले पहले खत्म कर दे, ये नहीं करना। वह औफू बिल अहद, और पूरा करो अहद को, अहद को बार बार कुरान कहता है अहद निभाओ, अहद पूरा करो, अहद इन्नल अहद कान मसूला, अहदों की पूछ गिछ हो जाएगी, अहद इनके बारे में पूछा जाएगा, और पूछने वाला कौन होगा? कोई इंसान नहीं होगा, अल्लाह होगा। मुआहदे हैं, लेन देन है, या आम मामलात हैं, उनमें जो अहद किए हैं उनको पूरा करो। मजदूर को जितनी मजदूरी देनी है उसके साथ अहद किया हुआ, उसको पूरा करो, इतना काम करोगे इतनी उजरत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के साथ अहद किया करते थे, कबाइल के साथ, अगर नहीं पूरा कर सकते थे, कोई ऐसा मसला आ जाता था, उनके सामने उस अहद को रखा करते थे पहले कि ये अहद हम खत्म करते हैं, ये मुआहदा खत्म होता है, उसके बाद उनके साथ कोई कोई जो जंग होती थी उसके बाद होती थी। लेकिन ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद अपने अंदर ही बस रख के और अहद को खत्म कर दिया और खुद ही सोच लिया कि अब हम इनके साथ वो करेंगे। जब आप किसी मुल्क में भी जाते हैं तो आपने वीजे के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप उनके साथ एक अहद करते हैं कि मैं जब आपके मुल्क में आऊंगा तो मैं यानी पीसफुल रहूंगा, मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करूंगा जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो या कोई ऐसी चीज हो। जब आप किसी के सिटीजन बनने लगते हैं तब भी आप वो अहद उठाते हैं कि मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा जो यहाँ पे इस मुल्क के लिए मसला बने और फसाद का बायस हो। लेकिन अहदों की हमने ये भी चीज छोड़ दिया। वह औफुल कईल, और पूरा करो नाप को, नाप तोल के फिर सूरह मुतफ़िफ़ीन में तो सबसे पहले ही बात ये आती है, नाप तोल के अंदर कमी बेशी करने वाला, कयामत के दिन उसको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। नाप तोल में कमी बेशी क्या, सिर्फ ये नहीं है कि तराजू पकड़ा हुआ है तो नाप तोल में कमी बेशी कर रहे हैं, बल्कि जितने आवर्स आपने कहीं लगाने हैं, जितनी आपकी ड्यूटी है उसको भी पूरा करना, ये भी एक यानी नाप तोल ही है, ये वक्त का नाप तोल है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना वाले नापतोल में बहुत कमी बेशी किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने आयात उतारी तो वो फिर सही नापतोल करने लगे। और जिसके हाथ में ये नापतोल का पैमाना होता है, आप देखें कि वहां पे कितने घपले होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नापतोल में कमी बेशी की जाती है तो वहां खेतियां नहीं उगती, वहां कहत साली आ जाती है। वाकई देखे हमारे मुल्कों के अंदर कितनी चीजों की महंगाई हो गई, कितनी चीजों की किल्लत हो जाती है नापतोल में कमी बेशी की वजह से। अल्लाह, मालिक बिन दिनार उन्होंने कहा कि मेरा पड़ोसी जो था मेरे पास आया, उसकी मौत का वक्त करीब था, और कहते हैं कि वो कह रहा था कि आग के दो पहाड़ यानी मैं वो देखता हूँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहने लगा अबू याहिया मेरे पास दो पहलवाने थे, एक से मैं लिया करता था, एक से मैं दिया करता था, वो इसी हालत में मर गया। यानी कलमा नहीं उसने उसे पढ़ा जा रहा था, उसको ये था आग के दो पहाड़, कमी बेशी करता था ना, जब देने वाला पैमाना जो छोटा रखा और लेने वाला वो बड़ा रखा। ये नापतोल में कमी बेशी इंसान को देखो किस टाइम पे जाके उसके लिए एक मुसीबत बन जाती है, जिस वक्त उसको कलमे की जरूरत होती है पढ़ने की। वाइदा किल तुम वजीनो बिल किस्तासिल मुस्तकीम, जब तुम नापो भी तो तोलो सात तराजू के सीधी, यानी डंडी ना मारो, पूरा पूरा दो, चाहे नाप तोल है चाहे वजन करना है, वजन करने में भी जरा सी भी कमी बेशी ना करो कि कोई फायदा कमा लूंगा। और आप देखें आज हमारे मुल्क में जो दूध वगैरह बिकता है तो वो तो इस तरह ही बेचने आते हैं, अब उसके अंदर से कोई पैमाना नहीं है कि आप नाप सकें इसमें कितना पानी है क्या, लेकिन कहीं आपको खालिस दूध नहीं मिलता, हर जगह पानी की मिलावट होती है, कोई देख नहीं ना सकता, कोई उसको नाप नहीं सकता, लेकिन कोई आपको पता नहीं, कोई होगा शायद पूरे मुल्क में कोई एक होगा क्योंकि खालिस दूध देता होगा, वरना हर कोई पानी मिलाता। अल्लाहु अकबर, जबकि हमारे कुरान में क्या आया। तो इब्ने उमर जब किसी बेचने वाले के पास से गुजरते थे ना तो उसको फरमाया करते थे अल्लाह से डरो, नाप तोल पूरा करना, क्योंकि कम देने वालों को खड़ा किया जाएगा, हत्ता के पसीना उनके आधे कानों तक पहुंचा होगा, यानी इतना पसीना होगा कि यहां तक पहुंच जाएगा, यानी अपने पसीने में डूबे होंगे। आप देखें सिर्फ यही पैमाने नहीं है कि कोई तराजू ही कोई, आप ये भी देखें कोई कपड़ा नापने लगते हैं उनके पास गज होता है, जब गज देने लगते हैं, जब कोई खरीदने लगता है तो इसको इस तरह से करके खींच के कपड़ा नापते हैं, और घर आके आप देखते हैं तो कितना कम होता है। हर जगह जहां पे इंसान थोड़ा थोड़ा फायदा, कहीं कहीं डंडी मार मार के छोटा छोटा जमा करता है, वो अपने लिए आग जमा करता है। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, अगर ये इंसान करेगा पूरा पूरा नाप तोल तो ये बेहतर है और ज्यादा अच्छा अंजाम के तबार से, ये दुनिया में भी बेहतर है, इसलिए दुनिया में ऐसे ही लोग जो ऑनेस्ट होते हैं दयानतदार होते हैं उनकी आप देखें बिजनेस कितना फ्लरिश करता है, लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं, उनका ट्रस्ट कायम हो जाता है कि जी हम इतनी दूर से आ जाएंगे क्योंकि आप ईमानदारी के साथ देते हैं चीज, और इंजाम के लिहाज से भी बेहतर है कि अल्लाह के पास आखिरत में भी उनके लिए अच्छा अजर है। तो जो दयानतदार ताजिर होगा ना कयामत के दिन उसके लिए भी बहुत बड़ा अजर है, दयानतदार ताजिर के लिए। वाला तक्फू, और ना पीछे पड़ो किस चीज के, मां लई सला कभी इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी क्या मतलब है, तजस्सुस ना करो, तजस्सुस या बदगुमानी ना करो, आपको पता है नहीं, हाँ, अपने दिमाग के अंदर बना के जी उसने ऐसे किया होगा, उसने ये किया होगा, या तजस्सुस करते ना, देखो जरा टो लगाऊं किसने क्या किया। तो इससे मना किया गया, तुम्हें जब इल्म ही नहीं है क्यों पीछे पड़ रहा है? पीछे पड़ना है ना, ये चीजें मैंने आपको पता है ना, बुद्धि को कहते हैं तकफू, पीछे मत पड़ो, मत फॉलो करो। जिसको जानते ही नहीं हो, आंखें बंद करके किसी चीज के पीछे पड़ जाना, कोई दलील नहीं, कोई बात नहीं, खुद ब खुद कोई राय कायम कर लेना घर बैठे। और ये क्या चीज है, इसके बारे में मुफसरी ने काफी अकवाल है उनके, जैसे मसलन अबाउ अजदाद की तकलीद करना, कुछ पता नहीं, कोई दलील नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में, बस जी हमारी अम्मी ऐसे किया करती थी, बस जी हमारी दादी ने ये किया था, हमारे तो खानदान में ये होता है, तो क्या दलील है? कोई दलील नहीं। तो ये है कि भाई किस चीज का इल्म नहीं है क्यों उसके पीछे पड़ेगा। इसी तरह बाज लोग इतनी एग्जैजरेशन करते हैं, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद सुना अपने कानों से, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, अल्लाह के कुछ भी नहीं होता, खुद नहीं देखा होता। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, इसका आपको इल्म ना। इसी तरह तोहमत लगाना भी ऐसे ही है, किसी के ऊपर ड्यूटी, किसी को देख लिया किसी के घर जाते हुए, बस इनका तो कोई अफेयर है, आपको इल्म नहीं है, आप क्यों उसकी बात के पीछे पड़ गए? सुनी सुनाई बातों के ऊपर चल पड़ना, उनके मुताबिक अमल करने लगना, तोहमतें लगाना, ये सब इनके अंदर आ जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसी बातों से मना फरमाया कि मत ऐसी बातों के पीछे पड़ो जो तुम वहमो गुमान से अपनी, देखें पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाना तो 7 कबीरा गुनाहों में से एक है, इसकी सख्त पूछगिछ होगी क्यामत के दिन। किसी भी औरत के ऊपर बगैर इल्म के ऐसी झूठी बातें उसके साथ मंसूब कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नाहक झगड़े में मदद करे वो तो अल्लाह की नाराजगी में रहता है जब तक इसको छोड़ नहीं देता। ये नाहक है झगड़ा, जिस पार्टी ने जुल्म किया आप उसके साथ खड़े हो गए, आपको ना कोई पता ना कुछ, आप उसके साथ खड़े हो गए, अल्लाह की नाराजगी में रहेंगे जब तक इस चीज को छोड़ नहीं देते। किसी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है, किसी के ना हक उसके अंदर साथ देने लगे, कोई जागीरदार है और दूसरा एक बेचारा उसका मुजारा, तो आपने आप जागीरदार के साथ खड़े हो गए हालांकि वो जालिम है। इसी तरह जो किसी मुसलमान मर्द पे या औरत पे बोहतान लगाता है, इसको अल्लाह ताला दोस्तियों की पीप में बंद कर देगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, इल्जाम लगा देना, बोहतान लगा देना, जी उसका ऐसे है वो इस तरह है, अपने गुमान से, इल्म ना ना को पता ना कुछ है, बस ऐसे ही कहते जाना। तो कतादा ने कहा कि जब तुमने सुना ना हो तो ये मत कहो मैंने सुना, जब तुमने देखा ना हो तो ये मत कहो कि मैंने देखा, क्योंकि इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू लाए का कान हूं मसूला, ये जो कान हैं, आंखें हैं, दिल हैं, इनके बारे में सवाल होगा कि कैसे इस्तेमाल किया, कानों से क्या सुना, क्या यही सुनती आई चीजें, गप्पे, इधर उधर की बोहतान, इधर उधर की बातें, या कोई काम की बात भी सुनी, मुंह से जो बात निकाली वो कैसी थी, आंखों से क्या देखा, पूछ होगी इसकी, दिल में क्या ख्यालात रखे हुए थे। अब दिल की बातें तो खैर कोई भी नहीं जानता, दिल तो इंसान को खुद पता है या उसके अल्लाह को पता है कि इन दिलों के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया इनके बारे में पूछ होगी, अब हमें कितना केयरफुल होना चाहिए कि इनका भी हिसाब किताब हमने देना, हमारे कानों में क्या जा रहा है, ये बोतान और इधर उधर की बातें, या ये सुनते रहते हैं हर वक्त, या म्यूजिक सुनते रहते हैं, और आंखों से क्या देखते हैं, पता नहीं टीवी पे क्या क्या चीजें आती हैं जो हम देखते रहते हैं, या कंप्यूटरों पे, या किसी की तरफ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, साथ वाले को नहीं पता होता कि क्या देख रहे हैं, मगर अल्लाह को पता है कि क्या देख रहे हैं, वो जानता है। इनके बारे में सवाल होगा, जो चीज सुनना जायज नहीं थी तुमने क्यों सुनी, जो चीज देखनी सही नहीं थी तुमने क्यों देखी, जिस चीज का इरादा नहीं करना था तुमने क्यों इसका इरादा किया। और फिर यह भी सवाल होगा कि आंख कान और दिल तो तुम्हें दिए थे, इनसे हिदायत पानी थी, इनको तुमने अल्लाह की ताकत में इस्तेमाल किया या नहीं। और ये भी है कि इनसे पूछा जाएगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला इनको गोयाई की कुव्वत अता फरमा देगा, और ये इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अईदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اور سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ ہم ان کے منہوں پہ تو مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پیر کلام کریں گے، وہ گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہیں کرتے رہیں. اور سورہ حمیم سجدہ میں تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کاموں کی گواہی دیں گی جو وہ کرتے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، پھر ان سے سوال کرے گا، یہ بھی اس کا معنی، دو تین یہ معنی اس کے اندر آ گئے. تو اس لیے کیئرفل ہونا چاہیے کہ کان، آنکھیں اور یہ میرا دل ہے نا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کے ہی ہیں. یہ تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیے ہوئے ہیں کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں، ان کو یوز کر لوں، لیکن ان کو اپنا نہ سمجھے، یہ آپ کے وفادار نہیں ہیں. ان کو غلط کام پہ چلایا تو یہی ان باتوں کی گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے اپنا بچہ ہو اور آپ سمجھیں کہ یہ میرا بچہ، یہ تھوڑی باہر جا کے ہماری باتیں بتائے گا، اور وہی بچہ باہر جا کے کسی کو بتانے لگے تو کیسا لگتا ہے. لیکن جب اپنے اعضاء یہ قیامت کے دن گواہیاں دینے لگیں گے اور یہی بولنے لگیں گے تو انسان کے اوپر کیا گزرے گی؟ اللہ اکبر. اور ہم کتنی باتیں ایسی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم صرف ایک اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کسی کی شخصیت کا، دوسرا ہم نے دیکھا نہیں ہوتا. خام خام ہم تبصرے کرنے لگتے ہیں، ڈسکشن کرنے لگتے ہیں، میں نے تو اس کو ایسے دیکھ لیا، میں نے اس کو یہ کرا، وہ فلانی یہ کر رہی تھی، یعنی اور آگے پھیلانے لگتے ہیں. اور بعض دفعہ پوری بات بھی نہیں پتا ہوتی، ادھوری باتیں ہی لے کے اللہ اکبر آگے آگے دیتے جاتے ہیں. تو سوچیں کہ ان باتوں کا کیسے ہم جواب دیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، اور پھر کر کے بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جو آخرت کا گھر جو بنانے والے ہیں نا، جو ان کو آخرت کا گھر چاہیے، وہ تو بڑے کانشس ہیں، وہ ان اسمع اور بصر اور افواد کو ایسے ہی نہیں یوز کرتے، ان کو بڑا سوچ سمجھ کے یوز کرتے ہیں کہ میں نے آخرت کے لیے ان سے کچھ بنانا ہے، ان کو فضول کاموں میں نہیں یوز کرنا. یہ بہت قیمتی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، ان سے کوئی کام آخرت کا بھی بن رہا ہے یا ادھر ادھر بیکار ہی یوز ہو رہی ہیں؟ ہم تو کتنے آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں نا، فلانے تو یہ، فلانا تو جھوٹا ہے، فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو یہ ہے. نہیں، ایسی باتیں خود مت منہ سے نکالو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا تمہیں. اور سنی سنائی باتوں پہ پھر آگے سے آگے باتیں بناتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور دیکھو زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلنا، اکڑ والی چال اللہ کو نہیں پسند. تم اکڑتے کس بات پہ؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم تو زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے، تم اکڑ کس بات کی ہے؟ تم زمین کو پھاڑ لو گے، پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ جاؤ گے. جب انسان کے اندر اکڑ آتی ہے نا تو چال میں وہ شو کرنے لگتی ہے، انسان زمین پہ بھی پیر مار مار کے چلتا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں اس نے زمین کو ہی پھاڑ دینا، توڑ تو نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہلا نہیں سکتے. پھر ایسا کرنے کو تم نے کون سا کارنامہ کر لیا کہ تم اس طرح چل رہے ہو؟ پھر انسان کا سر بھی ایسے اکڑ جاتا ہے، تو پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ جانا تم نے. پہاڑ کے مقابلے میں خود کو دیکھو، کیا ہو تم؟ چھوٹی سی چیز، اور کتنا مرضی زور لگا لو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، کتنے سے ذرے ہو تم. تو یہاں پہ چال، ایسی چال کو منع کیا گیا، تکبر جو ہے نا، اتراہنا، اتراہٹ، چاہے وہ اپنے حسن کی ہے، چاہے وہ اپنے مال کی ہے، چاہے وہ اپنے علم کی ہے، کوئی بھی تکبر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت تو اس کے لیے حرام ہے، جنت میں نہیں داخل ہوگا، جنت بینڈ ہے اس کے لیے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو اترانا اتنا ہے کہ اترا اترا کے چلنا، اترا اترا کے باتیں کرنا، اترانا اپنی قابلیت کے اوپر، اپنی پتہ نہیں ڈگریوں پہ، اپنے پہننے اوڑھنے پہ. اور جب ایسا پہن اوڑھ لیتی، خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ یہ چیز ہے، तो फिर चाल में भी फर्क आ जाता है, चाल भी ऐसी तरह तरह आजकल तो बल्कि सिखाते हैं कि ऐसी चाल मॉडल्स की तरह करना, कैसे होता है वो, किस तरह से ये चाल चली जाती है, किस तरह नखरे के साथ, अंदाज के साथ, और इस तरह सीने को आगे निकाल के, और बस कैसे कि भाई बड़ाई उसके अंदर हमारी हो और नाजरा नखरा हमारा झलक रहा हो। अल्लाह को आज ही पसंद है, आज ही जरा हो अल्लाह के आगे। तुम क्या अपने आप को बड़ी चीज समझते हो? कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिअहू इंदा रब्बिका मकरूहा। याद रखो ये सारी चीजें जितनी आ गई हैं, जितनी बातें ये 10 कमेंडमेंट्स आई हैं 22 से लेके 37 आयत तक, ये सब बातें अल्लाह ने गिनवा दी। ये काम है जिनका मैंने तुम्हें रोक दिया, इनको नहीं करना। ये सब बुराई के काम है, चाहे वालदैन से बदतमीजी करना है, चाहे जिना है, कत्ल है, फजूल खर्ची है, मुझे नहीं फजूल खर्ची पसंद, शैतान के भाई बन जाओगे और शैतान के साथ रिश्तेदारी करना क्योंकि किसी को शौक है तो वो जरूर फजूल खर्चियां करे। याद रखे फिर शैतान का भाई बन सकता है, उसका रिश्तेदार बन सकता है, वो फिर शैतान का रिश्तेदार शैतान के साथ ही होगा फिर क्यामत के दिन। फिर बुखल जो है, यतीम का माल खाना, वादे तोड़ना, नाप तोल में कमी बेशी करना, बेबुनियाद बातें किधर की किधर लगाए रखना, लोगों के ऊपर तोहमते लगाते रहना, अपने गुमान से बातें करते रहना, उसने ये उसने वो, कब घर बैठे कई लोग स्टोरियां बनाते रहते हैं, कुछ उनका काम फारिग ज़हन है जाहिर है और कोई काम तो है होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे फिर बैठे। तो मत फॉलो करो, ये नहीं काम करना, को तुम्हारे आंखों को, कानों को, इनके तुम्हारी पूछ होनी है, ये सोच के इनको यूज करना कि पूछ होगी इनके बारे में। अल्लाह हम किन किन के जवाब देंगे या अल्लाह, हमारी आंखों ने क्या क्या देखा, कानों ने क्या क्या सुना, दिलों में क्या है, कहीं बोझ भरे हुए, कहीं हसद भरे हुए, कहीं उसके खिलाफ कीने, इनके हम जवाब देने लगे तो हमारे तो ये सारी कुछ नहीं रहेगा। फिर सोचे हम कहाँ खड़े, हमें कितनी इस्लाह की जरूरत है, और अभी हम बहुत बड़े बने हुए कि हम तो इतनी कितने हमने कितना आगे पहुंच गए हैं, इतने ही हमारे पर्चे जितने आज हमने पढ़े हैं ना, ये सारे पर्चों का हमसे अगर सिर्फ सवाल सिर्फ इतना ही हो जाए ना, कानों से क्या सुना, दिल में क्या क्या सोचते रहे, कौन कौन से ख्यालात पाले हुए थे, दिल में किसके लिए नफरतें थी, दिल में क्या थे और लोगों को क्या शो करते थे। अल्लाह ने तो ये नेकी कमाने के जरिए तुम्हें दिए हुए थे, तुमने इसे क्या कमाया, क्या कहेंगे हम। ये जुमाने जुमानों से बातें कर लेना, ये तो आसान काम है, असल बात ये कि इन टेस्ट्स में हम पास हो जाएं। अल्लाह ताला ने कहा प्रोहिबिटेड काम है, ये बुराइयां हैं अल्लाह के नजदीक। अब इससे ज्यादा कोई बात कहने की जरूरत है? अब आप कहेंगे कि कहाँ पे हराम लिखा हुआ है, ये देखो मैं इस तरह की अकड़ अकड़ के चाल अगर चलती हूँ, सूरह लुकमान में तो ऐसी चाल से ही मना किया गया जो तकब्बुर वाली चाल है, फखर को नहीं पसंद, खुद पसंदी, अपने आप को अपने आप में ही रहते रहना, ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद। तो आप कहें हमने इन्हें ये कहाँ पे, ये कौन सा दीन है, कौन सी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बात, नहीं ये पढ़ो, ये अल्लाह ताला ने जब फरमा दी ये बुराई है, ये बुराई है, कत्ले औलाद बुराई है, वो तुम समझते हो मेरी औलाद है, मैं चाहे जन्म दूं या ना दूं या खत्म करूं, मेरा हक क्या है, नहीं ये बुराई है, ये जान अल्लाह की दी हुई है, जो औलाद है वो भी अल्लाह की अमानत है, ये कान आंखें ये दिल भी अल्लाह की अमानत, सब कुछ अल्लाह का, तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ने इसीलिए इन चीजों के बारे में पूछना। ये अल्लाह के यहाँ मकरूह है, मकरूह का मतलब ये नहीं कि हराम नहीं है, मकरूह है तो जैसे वो फिक के अंदर कहते हैं मकरूह चीज है ना पसंद, नहीं मकरूह का मतलब यहाँ पे कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये डिसलाइक्ड है, काबिले नफरत है अल्लाह के नजदीक। अब देखें सारी कैटेगरीज इसमें आ गई, काम भी आ गए, बास बास बोलने की चीजें आ गई, बास सोच की चीज आ गई, बास चाल ढाल आ गई, इसमें माल से मुतल्लिक चीजें भी आ गई, सब चीजें ही आ गई। अब ये काम लिस्ट बना ले, ज़ालिका मिम्मा अवहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमत, ये चीजें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें वही की हैं अपनी हिकमत की, तेरे रब की हिकमत में से, यानी ये बातें हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बताई हैं, तुम्हें हिकमत मिल गई है अगर तुम ये इन बातों पे अमल करोगे, और जिसको हिकमत मिल जाए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना उसको तो खैर कसीर मिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए हिकमत मांगा करते थे, अल्लाह ताला ने वही के जरिए हिकमत इतनी वैल्यूएबल बात है। हिकमत का मतलब है क्या है, जिसके अंदर दानाई हो, जो बड़ी अकल की समझ की बात, जिसमें अदल भी है, इंसाफ है, फायदामंद इल्म, वो हिकमत है। तो पीस ऑफ विजडम तुम्हें दे दिया, ये तुम्हें दी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, मामूली बात नहीं है, रब्बू का, तेरे रब की तरफ से। तो फिर अब एंड उसी चीज से किया गया जिससे स्टार्ट किया गया, ब्रैकेट समझ ले, बना दे, बीच में सारे अहकामात वो जो इंसानों से मुतल्लिक थे वो दे के हकूल बात से मुतल्लिक थे। तो सोचे हकूल बात भी कितने इंपॉर्टेंट है, वरना अगर ये ना इंपॉर्टेंट होते तो यहाँ पे इतनी लंबी ये बातें करने की कोई वजह नहीं थी। वला तजाल मा अल्लाह इलाहा आखर, एंड भी इस बात से किया, ना तुम बनाना अल्लाह के साथ कोई दूसरा इला, अगर बनाओगे तो क्या होगा, फतुल काफी जहन्नम मलूमम मदहूरा, तो डाल दिए जाओगे जहन्नुम में मलामत किए हुए रहमत से दूर। अगर तौहीद में कहीं कोई कोई कमी हो गई तो ये अंजाम, बिल्कुल अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ना अपने आप को ही मलामत करोगे, हाय मुझे बातें पता चल भी गई थी, मुझे सब मालूम था, फिर भी मैंने क्यों नहीं अमल किया। जाहिर है जब कोई देखे, कोई आपको बता भी दे और उसके बावजूद भी इंसान उसी रास्ते पे चलता रहे तो फिर मलामत अपने आप को ही करेगा ना। आपने मसलन किसी को कहा भाई ये चीज ना खाना, मसलन आंख के जिना से, आज की बात में से देखो, आंख के जिना से भाई बचो, ये देखो ये यहाँ पे अल्लाह ताला का ये हुक्म आ गया कि ये सैया है, तो उसके बावजूद वो फौज चीजें देखता रहे, उसके बावजूद वो ऐसी बातें और ऐसी फिल्में और ऐसी मनाजिर देखता रहे, तो फिर क्या होगा उसके बाद, जब वहां पे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तो अपने आप को ही मलामत करेगा ना। तो इसी तरह जो शिर्क भी करता है अल्लाह के साथ कोई इलाह बना ले तो वो भी जहन्नुम के अंदर इसी तरह मलामत, सजा अपने आप को मलामत करता रहेगा और रहमत से दूर होगा, अल्लाह ताला की रहमत उसके लिए नहीं होगी। अगर सारे ही काम इंसान कहता है कि बड़ा मुश्किल है, ये भी बड़ा मुश्किल है, ये शैतान की तरफ से बातें होती हैं, बड़ा मुश्किल है। अगर इंसान ये जान ले कि मेरे रब का ये हुक्म है, तो चाहे कत्ले औलाद से खुद को रोकना, इंसान का तो बड़ा मुश्किल है, क्या करूं क्या, ये तो बहुत ऐसे है, मैं तो सारी जिंदगी के लिए मुसीबत में फंस जाऊंगी, ये नहीं। ऐसे इंसान ने जब सोच लिया कि मैंने औलाद को कत्ल नहीं करना, अल्लाह का ये हुक्म है, तो बस नहीं, रिश्तेदारों के साथ है, नहीं रिश्तेदार तो हमें बड़ा तंग करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, हम उनके साथ इतना नहीं सबर कर सकते, नहीं, जब अल्लाह का हुक्म है, नहीं, उनको उनका हक दो, उनका हक है कि उनके साथ सिला रहमी करो, तो करनी है, चाहे वो आपको हकूक दे नहीं दे, आपने देने। आज तो हम दूसरों को मलामत कर लेते हैं ना कि जो है ना उसने ऐसा किया और उसने ये किया और वो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, कल अगर इनमें से काम कोई नहीं किया तो खुद को मलामत करेंगे, काश मैं दुनिया में समझ जाती, काश मैंने ऐसा ना किया था। अभी देखे सिर्फ इतनी सी बात देख रहे हैं, अकड़ अकड़ के मत चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है कि बाहम तवाजो इख्तियार करो, आपस में एक दूसरे के साथ आजी करो, कोई किसी पे फखर ना करे, और हमारे तो टॉपिक्स ही फखर के होते हैं, हम एक दूसरे पर फखर करके दिखाएं कि मैं तुमसे बढ़ के हूँ, बल्कि कई लोगों की बातें ही स्टार्ट और एंड ही इस बात से होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कितनी बड़ी चीज है, हमारे कॉन्टेक्ट कितने बड़े हैं, फलां को भी हम जानते हैं, फलां को भी हम जानते हैं, खानदान हमारा कितना बड़ा है, उसी से बात शुरू होती है और उसी पे खत्म हो, क्या एक दूसरे पर फखर करना ही है, ना बाहम ज्यादती करो, यानी अकड़े मत रहो, खुद को बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। हम कहते अगर खुद को बड़ा ना करके दिखाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ये कैसे जानेगा कि मैं कितनी बड़ी चीज हूं, मुंह से बोल बोल के बताते हैं। बड़ाई तो किसके अंदर है, जिस जो जो तकवा वाला है, बड़ाई इसमें नहीं है कि फलां जगह का सदर मेरा रिश्तेदार है और फलां वजीर आजम जो है ना वो हमारे जानने वाले हैं और फलां तो हमारे हमसाए होते थे और फलां तो हमारे दोस्त हैं और फलां के चचा और पप्पा को मैं जानती, ये सोचने के बाद जिसके दिल के अंदर इतना सा भी तकब्बुर हुआ ना, जर्रे के बराबर भी, जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर इंसान उसके बाद ऐसी फुखरिया बातें कर सकता है? अल्लाह ताला ने तो तुम्हें पैदा ही कैसे किया कि तुम दुनिया में ही आए तो झुके भी आए थे और तुम अकड़ने लगे। ये जो सारी आयतें हैं ना, एक एक आयत एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर एक दर्स हो सकता है। तो मुख्तसर सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, हम इतने पे ही अमल कर लें तो बड़ी बात है। और ज्यादा इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में बात हो सकती है। सिर्फ समा बसर और फुआत की मसूलियत के ऊपर बहुत बातें हो सकती हैं। मोहब्बतें किसके लिए हैं दिल के अंदर, और किसके लिए किससे इम्प्रेस्ड हैं, और किस जैसे बनना चाहते हैं, और किसको चाहत की और हसरत की नजरों से देखते हैं, और जिना के ऊपर, यानी आप ने फरमाया कुरैश के नौजवानों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हिफाजत को जिसको महफूज किया है वो उसको महफूज करो, शर्मगाह को महफूज अल्लाह ताला ने कर दिया, जो इसको महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन किसी से बात ना करे, और जो उसे बात नहीं करेगा, किसी के ऊपर रहमत नहीं करेगा, तो वो किधर जाएगा फिर? और हम अगर इसके सद्दे जराए नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सारे सद्दे जराए अल्लाह ताला ने खुद वो बंद कर दिए रास्ते, उनको हम कुछ समझते ही नहीं, हमारे लिए वो कोई बिग डील नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कौम के अंदर, किसी कौम में बेहयाई नहीं फैलती मगर ये कि उनमें अमवात आम हो जाती है, यानी जब किसी में बेहयाई आती है मौतें आम हो जाती हैं। आज देखें कितनी मौतें हैं, खुद अपने देख ले क्या क्या बीमारियां आ गई, जवान मौतें हो रही हैं, और इतनी मौतें हो रही हैं कि आए दिन आप खबरें बस उठा लें सिवाय मौत की खबरों के और कोई खबरें नहीं है। जब बेहयाई फैलेगी किसी कौम में तो ये होगा। इन हदीसों पर भी तो गौर किया करोगे, आप डिस्कशन ही करते रहते हैं इसलिए हो गया उसलिए हो गया, तो ये हदीस भी तो कुछ बताती है कि बेहयाई की वजह से हम बात होती है, नाप तोल में कमी बेशी की वजह से कि किल्लत हो जाती है, हम किल्लत के कुछ और रीजन ढूंढते रहते हैं। फरमाया जिस कौम में जिना जाहिर हो जाता है वहां कहत आम हो जाता है, कहत पड़ जाता है। जिस कौम में रिश्वत आम होती है उस कौम का रोब चला जाता है दुनिया से। अब मुझे बताओ इन इन वजूहात में भी कोई गौर करता है? अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जिस तरह से हक है इन पे अमल करने का उस तरह से हमसे अमल करवा ले, अमल करना आसान फरमा दे, और शैतान के वसवास से और शैतान के शरंगेजियां उनसे हम सबको महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत सुने इंशाअल्लाह।
خيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.